नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष की स्थिति लगातार बदल रही है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें वर्तमान स्थिति और मौजूदा तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से काम करेगा। उन्होंने क्षेत्रीय समूहों को सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श से काम करने का भी निर्देश दिया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने जाने वाली कुल 30 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी, लेकिन कई मार्गों पर सेवाएं सीमित रहेंगी। दोनों एयरलाइंस जेद्दाह रूट पर निर्धारित सेवाएं जारी रखेंगी। भारत और जेद्दाह के बीच कुल 10 उड़ानें संचालित होंगी। इनमें एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी उड़ान शामिल हैं। एयर इंडिया संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से कुल 12 गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करना है। वित्त विधेयक 2026 भी आज सदन के कामकाज की सूची में विचार और पारित करने के लिए शामिल है। राज्यसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रुप ए के सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियमित करने वाले सामान्य नियमों और इन बलों से संबंधित अन्य नियमों को विनियमित करना है। दूसरा विनियोग विधेयक 2026 भी आज सदन के कामकाज की सूची में विचार के लिए शामिल है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 25 मार्च तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग की तैयारियों की समीक्षा की। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया जाएगा। इस सत्र में दिल्ली विधानसभा विधायकों की सहायता के लिए अपना एआई सक्षम चैटबॉट विधायी साथी शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनने जा रही है। असम, केरलम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को होगी। उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराया जाएगा। सभी चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची आज प्रकाशित करेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस सूची में उन मतदाताओं के नाम होंगे जिनके दस्तावेज का पूर्ण सत्यापन हो चुका है और जो निर्णय सूची में लंबित हैं। सूची प्रकाशित होने के बाद यदि मतदाताओं को कोई आपत्ति है तो वे ऑनलाइन ECI नेट ऐप या आयोग की वेबसाइट के माध्यम से या जिला मजिस्ट्रेट और उप विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 7वां चरण आरंभ करेंगे। इस चरण में खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस के अंतर्गत कई राज्यों में 19 खंडों की नीलामी होगी। इनमें खनिजों की विविध श्रृंखला शामिल है जो स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकियों, उर्वरकों और रणनीतिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।